इस कार्यक्रम के सभी पात्र, उनके नाम, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं तथा किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, घटना या स्थान से इनकी समानता एक संयोग मात्र है। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति, धर्म या समुदाय को आहत करने का नहीं है। भूत प्रेत और किसी भी अंधविश्वास को हम चैनल या कंपनी दावा नहीं करते और ना ही बढ़ावा देते हैं।
कहानी रोगी गाना पर कृष्णकांत के साथ
आगे मैं कृष्णकांत और आप सुन रहे हैं कहानी रोकी। आइए मिलाएं आपको रूहों की दुनिया से, केविन की दुनिया से। केविन जसवंत गढ़ गया था और वहां से कुछ अनसुलझे राज लेकर ही वापस आया। उसकी मदद करने वाला फकीर अब खुद मदद का मोहताज था। पर उसने केविन को शिवानी की आत्मा से मुक्ति दे दी थी और अभी भी केविन के ऊपर एक अनजानी रोग का खतरा बरकरार था। वैसे भी जसवंतगढ़ से आने के बाद केविन कुछ थका थका सा रहने लगा था। केविन पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। केविन को रह रह के दादाजी के गांव में हुई खौफनाक घटनाएं याद आ रही थी। अब केविन के भी जहन को डर ने घेर रखा था। कुछ सोचता हुआ केविन अपने कमरे की तरफ तेजी से बढ़ा, सामने रखे ड्रॉर में कुछ ढूंढना शुरू किया और जैसे ही आईने की तरफ घूम के देखा तो उसकी अपनी शक्ल में एक औरत की डरावनी शक्ल दिखाई दी। केविन घबरा गया और तुरंत खुद को वहां से हटाया, कुछ शांति मंत्रों का जाप किया, अपने सिक्के को कस के पकड़ा और फिर तैयार हुआ अपने खौफ का सामना करने के लिए। केविन ने अब सोच लिया था कि वो अब उस रूह को बुलाएगा जिसे उसने महसूस किया था। केविन ने अपने कमरे में अंधेरा किया, फिर कुछ मोमबत्ती एक लकड़ी के टुकड़े के पास चक्र बनाकर जलाया, अपने सिक्के को केंद्र बनाया और रूह का आह्वान करना शुरू किया। केविन ने उस रूह को आवाज लगाई।
मैं जानता हूं तुम मेरे करीब हो, मैंने तुम्हें महसूस किया है, अब मैं तुम्हें बुला रहा हूं, आओ मेरे पास। बताओ मुझे, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें और कौन हो तुम?
केविन का ध्यान अचानक से टूट गया। उसका मन अब पहले की तरह यकीन से काम नहीं कर पा रहा है, पर उसे ये यकीन तो खुद में लाना ही होगा अगर उसे इस रूह चक्र से मुक्ति ही चाहिए। उसे फिर ध्यान लगाना होगा। उसने फिर से अपने कमरे में अलग मंत्रों का जाप करना शुरू किया, लेकिन तभी उसके घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। कोई जोर जोर से उसका दरवाजा पीट रहा था। केविन का ध्यान भंग हो चुका था और ऐसे माहौल में वो किसी भी रूह से बात नहीं कर सकता था। थोड़े से चिढ़े मन से केविन नीचे उतरा। सीढ़ियों से उतरते हुए केविन को यूं एहसास हुआ जैसे कोई पीछे से धक्का देने वाला हो। केविन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। दरवाजे पर लगातार कोई दस्तक दे रहा था। केविन ने दरवाजा खोला। वो इंसान सीधा केविन के पैरों पर गिरा और बोला,
केविन आप ही हो?
कौन हो आप? मैंने आपको पहचाना नहीं।
मैं राजेश, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी मदद कर दो प्लीज। प्लीज मेरी मदद करो।
मदद? कैसी मदद?
मेरी 7 साल की बेटी कोमल, उसकी तबीयत बहुत खराब है और मुझे पता है कि उसे आप ही ठीक कर सकते हो। प्लीज मेरे साथ चलो।
क्या? और आखिर उसे हुआ क्या है?
उसे तेज बुखार है और कुछ बोल नहीं पा रही है। प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज।
देखिए, मेरे ख्याल से आप किसी डॉक्टर के पास जाइए।
केविन, मुझे पता है कि कोमल को डॉक्टर की नहीं तुम्हारी जरूरत है। प्लीज मना मत करो, चलो मेरे साथ चलो। प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ केविन, प्लीज।
ओहो, ठीक है, चलिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।
आप यहीं रुकिए, मैं भी आता हूँ।
ठीक है।
थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद केविन राजेश के घर जाने को तैयार हुआ, जिसकी 7 साल की बच्ची कोमल बीमार पड़ी थी। उसके घर में प्रवेश करते हुए केविन को कुछ अलग सा महसूस हुआ, पर इसको केविन ने नजरअंदाज किया। उसके जहन में बार बार एक ही बात कौंध रही थी कि आखिर वो भयानक सा चेहरा किसका था जिसे उसने महसूस किया था। आखिर वो कौन सी रूह है जो उसकी बुलाने पर भी नहीं आ रही है। उसने मन बना लिया था कि राजेश की बेटी को देखने के बाद उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देकर केविन वहां से चला आएगा। अपने ख्यालों के सहारे केविन ने उस कमरे में दस्तक दी।
आप सुन रहे हैं कहानी रोकी, कृष्णकांत के साथ सिर्फ गाना पर।
जहां पे राजेश की बेटी एकदम शांत अपने बिस्तर पर पड़ी थी, केविन को अंदर प्रवेश करते हुए ही फिर से कुछ अलग एहसास हुआ। पर फिर से उसने इस बात को नजरअंदाज किया और कोमल को देखा। उस शांत सी बच्ची को देख के केविन समझा कि शायद इसमें कोई रूह नहीं, क्योंकि अगर कोई रूह होती तो ये बच्ची इतनी शांत तो नहीं ही होती। इसके शरीर पे कुछ तो फर्क दिखता। ये बच्ची सिर्फ और सिर्फ बुखार में है, पर केविन सीधे वहां से निकल नहीं सकता था, तो राजेश की तसल्ली के लिए उसने बिस्तर के आसपास पवित्र जल का छिड़काव किया, थोड़े मंत्रों को याद किया, उस बच्ची के लिए दुआ की। ये सब देख के राजेश को थोड़ा संतोष मिला। केविन ने अब जाने का मन बना लिया था। वह उस बच्ची पे हाथ फेरता हुआ मन ही मन में सोच रहा था, आखिर वो घर में रूह किसकी रही होगी। तभी उस बच्ची ने केविन का हाथ, जो कि उसके हाथ के पास से गुजर रहा था, उसे जकड़ लिया। केविन से ज्यादा ताकत थी उस वक्त उस बच्ची में। केविन जैसे पलटा वो बच्ची सीधा उठकर बोली,
वो तेरी माँ है।
केविन समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। कोमल ये बोलकर बिस्तर पर गिर गई। कुछ ही पल में कोमल होश में आई और पहले जैसी बिल्कुल ठीक हो गई, जिस पर राजेश ने केविन का धन्यवाद किया। केविन के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी रूह थी जिसने उसे ये इशारा दिया। अब केविन घर पे जाके अब अपनी माँ की रूह को, जिसे उसने अपने घर में महसूस किया था, उसे बुलाने की कोशिश करने लगा। केविन ने बहुत कोशिश की पर सब बेकार था, क्योंकि केविन का मन अशांत था। उसके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर मेरी माँ मेरे सामने क्यों नहीं आना चाहती, क्या ये किसी रूह की साजिश थी। तभी केविन अचानक से उठा और अपनी अलमारी में कुछ कागज ढूंढने लगा। दरअसल केविन को अपने दादाजी की वो बात याद आ गई कि इस दुनिया में एक ऐसा भी विज्ञान है जिससे हम रूहों को महसूस कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तभी उसे एक फाइल मिली और इसी तलाश में उसे एक डॉक्टर का नंबर मिला, डॉक्टर गौतम देव, जो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक्सपर्ट थे। केविन अब इस विज्ञान का भी साथ लेना चाहता था अपनी माँ की रूह को बुलाने के लिए। ये पैरानॉर्मल वाले भी कुछ अजीब ही होते हैं। विज्ञान की मदद से उस ज्ञान तक पहुंचते हैं जो विज्ञान के ठीक विपरीत है, एकदम उल्टा। पर केविन को लगता था कि शायद डॉक्टर गौतम उसकी मदद कर सकते हैं। केविन उस फाइल के पते के मुताबिक डॉक्टर गौतम से मिलने उनके कॉलेज के पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट में जा पहुंचा, जहां डॉक्टर गौतम कॉलेज के बाद अक्सर प्रैक्टिस के लिए शाम तक रुका करते हैं।
आप सुन रहे हैं कहानी रूह की, कृष्णकांत के साथ सिर्फ गाना पर।
हाय डॉक्टर गौतम।
कम इन केविन, दरवाजा खुला ही है।
हाय डॉक्टर, आपको कैसे पता चला कि केविन मैं ही हूँ?
केविन केविन केविन, पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट है, यहाँ आने और जाने दोनों लोगों की खबर रखनी पड़ती है।
जी डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
बताओ क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो?
दरअसल एक रूह है मेरी माँ की, जिसे मैं अपने आसपास तो महसूस कर पा रहा हूं, पर मेरी हजार कोशिशों के बाद भी वो मेरे सामने नहीं आती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, प्लीज मेरी मदद कीजिए।
मदद तो सिर्फ तभी हो सकती है जब रूह चाहे। तुम्हें उसकी कमजोरी को समझकर ही उसे बात करने को तैयार करना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है।
आपका मतलब हम बिना उनकी इजाजत उनसे बात तक नहीं कर सकते? ओके।
बिल्कुल सही, इसीलिए मैं तुम्हें ये कुछ इक्विपमेंट्स दे रहा हूं। खास यंत्र है ये, जो रूह को बुलाने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये लो।
केविन डॉक्टर गौतम से मिलके काफी सुकून में था। उसने डॉक्टर गौतम से पैरानॉर्मल यंत्र की जानकारियां हासिल की और उसने कई तरीके को भेजाना। केविन अब रुचक्र में विज्ञान की मदद से भी परहेज नहीं चाहता था। वो बस किसी भी तरह अपनी माँ की रूह से मुलाकात करना चाहता था। डॉक्टर गौतम का ज्ञान और तजुर्बा जो उन्होंने केविन के साथ बांटा था वो अब यहाँ काम आने वाला था। इसके बदले केविन ने डॉक्टर गौतम से कुछ भी मदद देने का वादा किया, जिस पे डॉक्टर गौतम ने उसे सिटी हॉस्पिटल के मुर्दा घर का केस सॉल्व करने को कहा। सुना है वहां पे एक रूह अपनी दस्तक से सबको परेशान किए जा रही थी। केविन तैयार था अपने नए ज्ञान को आजमाने के लिए। ये विज्ञान केविन के लिए कोई नई मुसीबत तो नहीं बनने वाला था। सब बताऊंगा जब सुनेंगे एक कहानी रोकी। मेरे यानी कृष्ण गान के साथ सिर्फ गाना पर।
कहानी रोकी गाना पर कृष्ण गान के साथ क्रिएटेड बाय तारिक अहमद।